ओम शांति। हमारे बीच में एक ऐसी विभूति है जिनका नाम ही अंधकार को मिटाकर उषा अर्थात सुबह लाने का प्रतीक है। आप सबकी तालियों के बीच में मैं स्वागत करती हूँ दिल की गहराइयों से हमारी आदरणीय उषा दीदी जी का। आपका जन्म साउथ अफ्रीका के जाम्बिया शहर में हुआ। मात्र 12 वर्ष की उम्र में 1972 में आप संस्था के संपर्क में आए और आपके साउथ अफ्रीका के जाम्बिया शहर में जब पहली बार ब्रह्मा कुमारी बहनों का आगमन हुआ, आप पहली बार बहनों से मिले तो बहनों ने आपको कहा कि घर जाकर बताना ऐसे ऐसे बहनों का। तो दीदी ने एक प्रश्न पूछा कि घर जाकर क्या बताना है, कौन आया है। तो बहनों ने दीदी के हाथ में ब्रह्मा कुमारी वर्ड लिखा और दीदी अपने अनुभव में सुनाते हैं जैसे उस दिन से ही बाबा ने स्टैंप अपनी लगा दी और बाबा के थे और बाबा के बन गए। ब्रह्मा कुमारी बनने का सफर उस दिन से ही शुरू हुआ। 1980 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं अर्थ समर्पित कर दिया। आप बाबा का वो विशेष हीरा हैं जो कॉरपोरेट जगत में बाबा का ज्ञान देने के निमित्त बने। आपने ही कॉरपोरेट जगत में इस ज्ञान की नींव रखी। आपकी जीवा पर माँ सरस्वती का वास है। ज्ञान के बहुत गहरे गहरे रहस्यों को बहुत सहजता से तर्क देकर सबके सामने रखते हैं जो हरेक की बुद्धि को टच करता है। आपने बेशक लौकिक पढ़ाई 12वीं तक पढ़ी है लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स की बुद्धि का ताला खोलने के निमित्त प्यारे बाबा ने आपको बनाया है। आपको अनेकों टीवी चैनल्स में हम सुनते रहते हैं। आपका अपना भी यूट्यूब चैनल है। आप एक ऐसी हस्ती हैं, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा हो जो दीदी से रूबरू ना हुआ हो, चाहे सामने या चाहे सोशल मीडिया के थ्रू। हमने आपको अनेक बार सुना है। आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, राजयोग वरिष्ठ शिक्षिका तो हैं ही, साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर हैं और मैनेजमेंट ट्रेनर भी हैं। आपने भारतीय धर्म ग्रंथ रामायण और श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक रहस्यों पर गहरी रिसर्च की है और आपकी प्रवचन श्रृंखला पूरे विश्व में बेमिसाल मानी जाती है। आपने भारत के साथ साथ जर्मनी, चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका, यूएई, यूएसए आदि अनेक देशों में बाबा के ज्ञान की अलख जगाई है। आपकी ओजस्वी वाणी और ज्ञान के गहन चिंतन के लिए आपको अनेकों सम्मानों से नवाजा गया, जैसे 2012 में पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड से, 2019 में थाईलैंड सरकार द्वारा मॉरल अवार्ड एंड पीस मेडल के द्वारा, 2019 में यूएसए लॉस एंजल्स में फिलीपींस की राजकुमारी द्वारा एम्बेसडर ऑफ स्पिरिचुअल वेलनेस के रूप में भी आपको सम्मानित किया गया। और आज विशेष आपके लिए कुछ कहना चाहेंगे। अज्ञानता की गहरी नींद में जब समाज सोया है, व्यर्थ के अंधियारों में मानव ने चैन खोया है, तब ज्ञान सूर्य की किरणों सी उषा बिखेरती हैं। आपकी पावन वाणी से हर रूह सवरती है। रामायण के मर्म को आपने जन जन तक पहुंचाया है। गीता के दिव्य ज्ञान का वास्तविक रहस्य बताया है। तर्क संगत वाणी से संशय के हर बादल को छांटा है। आपने ही प्रेम और शांति का अमृत सबको बांटा है। तो अभी हम सुनेंगे वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएं। आदरणीय उषा दीदी जी इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बाबा के प्रतिदिन के मधुर महावाक्य हम सभी सुनते हैं। आज की बाबा की वाणी में बाबा ने विशेष सेवा के लिए जो मुख्य चित्र है, उन चित्रों को बड़े बड़े बना करके कैसे बड़े बड़े शहरों में विशेष स्थानों पर रखा जाए, उसकी श्रीमत हम बच्चों को दी है। बाबा की मुरलियों में, जैसे आज आशा दीदी ने कहा, अनेक लहरें हमें देखने को मिलती है, कभी सेवा की, कभी धारणा की, कभी ज्ञान और योग की। और इस तरह से जब हम बाबा की उन लहरों में लहराने लगते हैं, तो जैसे अनंत आनंद का अनुभव करते हैं। बाबा के मुरलियों में कुछ बातें तो स्थूल लेवल पर सेवा के लिए कही जाती है, परंतु जब अव्यक्त मधुर महावाक्य बाबा के सुनते हैं, तो ज्यादातर अव्यक्त मधुर महावाक्य सूक्ष्म स्तर पर हमें ले जाते हैं। और इस तरह से जो आज का टॉपिक है, वह भी स्थूल लेवल का नहीं है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर हमें अपने अंदर भी कार्य करने की आवश्यकता है। तो साथ साथ बेहद की सेवाओं में भी ये सूक्ष्म स्तर कितना तीव्र गति का साधन बन सकता है, ये हम सभी जानते हैं। और समय अनुसार अभी अगर देखा जाए तो बाबा स्थूल से सूक्ष्म की ओर हमें जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज का ये टॉपिक जो है, वृत्ति से वायुमंडल। वृत्ति शब्द जो है कैसे बनता है? वृत्ति शब्द निकला है व्रत से, और व्रत माना सर्कल। कोई चीज का बार बार सोचना, बार बार कोई विषय पर जब हमारे विचार चलते रहते हैं, तो वो विचारों का एक व्रत तैयार होता है। और जो व्रत तैयार होता है, वो हमारी वृत्ति धीरे धीरे बनने लगती है। इस वृत्ति को तैयार करने में कई चीजों का कनेक्शन है। पहला कनेक्शन है स्मृति का। स्मृति यानी एक अवेयरनेस जिसको कहा जाए, स्मृति यानी कोई ना कोई पास्ट की बातें जहां कनेक्टेड है, वो हमारी स्मृति के अंदर संजोई हुई है। उसका प्रभाव भी वृत्ति के ऊपर पड़ता है। बार बार वो स्मृति को जितना जागृत करते रहते हैं, विचारों में लाते रहते हैं, तो वो भी वृत्ति को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्मृति के साथ साथ दृष्टि, दृष्टि वृत्ति इकट्ठी बोली जाती है। जो कुछ भी हम ये स्थूल नेत्र से देखते हैं, देखने के बाद उसका जो प्रभाव है, कहीं न कहीं हमारी स्मृति के ऊपर भी जाता है। और उस कारण से जो आंतरिक विजन है, आंतरिक तीसरा नेत्र है,
उस तीसरे नेत्र के द्वारा भी बार बार उस दृश्य को हम इमर्श करते रहते हैं जो ये आंखों ने देखा है, वो भी वृत्ति के ऊपर अपना प्रभाव डालता है या वृत्ति को क्रिएट करने के लिए निमित्त बनता है। तीसरी बात है कृति, वृत्ति से कनेक्टेड स्मृति, दृष्टि और कृति, कृति यानी हमारे कर्म। तो कर्म भी एक प्रकार से प्रभावित करता है हमारी वृत्ति के ऊपर, बहुत बड़ा प्रभाव उसका छूट जाता है कर्मों का। वो कृति भी हमें, जैसे बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, पाप कर्म पुण्य कर्म जो किया हुआ है, कर्म जो हुआ है, वो वृत्ति के ऊपर भी प्रभाव डालता है। और चौथी चीज है सृष्टि। सृष्टि बाहर की नहीं, हमारे भीतर की सृष्टि, और वो भीतर की सृष्टि है हमारे संस्कारों की। तो संस्कार भी हमारी वृत्ति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। तो स्मृति, दृष्टि, कृति और सृष्टि, ये चारों चीज जो है वृत्ति के ऊपर प्रभाव डालता है या वृत्ति के फॉर्मेशन में, उसके निर्माण में, वृत्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसी के आधार पर हमारी स्थिति बनती है। जैसी वृत्ति होती है वैसी स्थिति बन जाती है, मानसिक स्थिति हमारी वैसी क्रिएट होने लगती है। अब मान लो कि ये चारों चीजों से कोई व्यक्ति बार बार अपने संकल्पों के द्वारा नकारात्मकता को ले आता है, जो अक्सर दुनिया में देखने को मिलता है कि बार बार नेगेटिव थिंकिंग चलता है, तो वो नेगेटिव संकल्पों का जो वृत्त तैयार हुआ, वो वृत्ति को बनाया, और उसी के कारण जो है हमारी स्थिति नकारात्मक होने लगती है ज्यादा से ज्यादा। अब नकारात्मक स्थिति होगी, वृत्ति और स्थिति हमारी होगी, तो क्या होगा? हमारा जो चारों ओर का प्रभा मंडल है, ऑरा है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी वृत्ति है, वो वाइब्रेट होती है, और वो वाइब्रेट होकर के हमारे चारों ओर एक एनर्जी फील्ड को क्रिएट करता है। अब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट होगा, यानी हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाएगा, और जितना हमारा ऑरा नेगेटिव होगा उतना नकारात्मक घटनाएं ज्यादा आकर्षित करते हैं। बहुत स्वाभाविक है, आपने कभी कभी जीवन के अंदर अनुभव किया होगा कि कभी कभी जीवन में एक के बाद एक बुरी खबर ही मिलती रहती है। घर से निकल रहे थे, एक सीढ़ी उतरने गए, पता नहीं पैर टेढ़ा पड़ गया, क्या हुआ, फ्रैक्चर हो गया। अरे एक ही सीढ़ी, फ्रैक्चर हो गया। फिर सुनने को मिला बच्चा फेल हो गया। फिर सुना नौकरी में धंधे में नुकसान हो गया। एक के बाद एक बुरी खबर ही मिलती रहती है। तब क्या कहते हैं लोग, पता नहीं क्या ग्रह दशा बैठी है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा ऑरा जो है वो मलिन हो चुका है, डर्टी हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। उस कारण से ये नकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करता है और उस कारण से उसका प्रभाव हम अपने जीवन के अंदर अनुभव कर रहे हैं। फिर ऐसे समय पर क्या करता है मनुष्य, कोई ज्योतिष के पास जाता है और ज्योतिष के पास जाकर कहते हैं, भाई देखो तो सही क्या ग्रह दशा हमारी चल रही है। एक के बाद एक नकारात्मक ही समाचार मिल रहे हैं, नेगेटिव समाचार ही मिल रहे हैं। अब वो ज्योतिष देखने के बाद क्या कहता है, अरे आपके ऊपर तो 7.5 लग गई है। अब जैसे ही ये कहा कि टेंशन हो जाता है, ये 7.5 लग गई, क्या हो गया उसका, या कहेंगे ढैया लग गई आपके ऊपर, या फलाना ग्रह आपको बहुत परेशान कर रहा है। अब ये जब सुनते हैं तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, इसका कोई उपाय उपाय होगा इससे छूटने का, तो वो ज्योतिष क्या कहेंगे, है ना उपाय, तो अच्छा क्या उपाय है, तो कहेंगे 1.25 लाख नाम लिखो भगवान के, जिस भी इष्ट को आप मानते हो उस इष्ट का नाम लिखो, या ओम नमः शिवाय 1.25 लाख बार लिखो, और फिर यज्ञ करके उसमें स्वाहा करो। फिर कहेगा आप जो है कुछ दान पुण्य करो, गरीबों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, शांति यज्ञ अपने घर के अंदर करो, या कहेंगे गाय को खिलाओ। अब ये सब करने के लिए से क्या वो 7.5 खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होते। भाव उसका ये है, साइंस उसके पीछे ये है कि नकारात्मकता के कारण आपका जो ऑरा मलिन हो गया है, अस्वच्छ हो गया है, अर्थात आपका पुण्य क्षीण हो गया है, और पुण्य क्षीण होने के कारण ही जो पाप कर्म किए हुए हैं पास्ट के, उसका प्रभाव ये नकारात्मकता के रूप में, जो नकारात्मक घटनाओं को आकर्षित कर रहा है, उस रूप में आप जीवन में अनुभव करते हैं। अब 1.25 लाख नाम लिखने के लिए जब कोई कहता है 1.25 लाख नाम लिखेंगे, तो जब भगवान का नाम लिखते हैं, ओम नमः शिवाय या कुछ भी लिखते हैं, उस समय कोई नेगेटिव विचार आएगा नहीं आएगा। भावार्थ ये कि आप पॉजिटिव कर्म करो, जिससे आपका ये ऑरा जो है क्लीन होना चाहिए, और फिर उसको स्वाहा करो, यज्ञ रचो और यज्ञ में स्वाहा करो। और स्वाहा करने से क्या होता है कि वो जो लिखत 1.25 लाख लिखत जो आपने लिखी है, उसका जो वाइब्रेशन है वो वायुमंडल के अंदर फैलता है, और वो वायुमंडल के अंदर फैलने से आपका भी जो प्रभा मंडल है, उस प्रभा मंडल के अंदर से जो मलिनता है, नेगेटिविटी है, उसको वो क्लीन करना शुरू करता है। अच्छा, गरीबों को दान पुण्य करो, भावार्थ ये कि आप जब किसी को दान करते हैं, उनकी दुआएं आपको प्राप्त होती है, ये दुआएं भी बहुत मदद करती है हमारे ऑरा क्लेंजिंग में। तीसरा, जैसे कि आप कोई शांति यज्ञ करो, माना वो वाइब्रेशंस को क्लीन करो, घर के वाइब्रेशंस को क्लीन करने के लिए कहा गया, ये सारा साइंस है और कुछ नहीं है। और जैसे ही आपका ये ऑरा क्लेंस होने लगेगा, क्लीन होने लगेगा, फिर आपको कहेंगे कि भाई आप अपने मन के अंदर पॉजिटिव सोच को अपनाओ। अब जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, उतना आपका वृत्त जो तैयार होगा, अर्थात आपकी वृत्ति जो तैयार होगी वो पॉजिटिव होगी, और वो प्रकंपित होने से आपका ऑरा शुद्ध होने लगेगा। तो वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल के अंदर वो प्रवाहित होने लगता है। तो अब ये वृत्ति को क्लीन करने के लिए पहली बात आवश्यकता है शुद्ध संकल्पों की। जितना हमारे पास शुद्ध, समर्थ, शक्तिशाली और सकारात्मक संकल्पों का स्टॉक होगा, जितना ये स्टॉक अधिक होगा उतना आपकी वृत्ति का क्लेंजिंग बहुत सुंदर तरीके से हो सकता है। दुनिया के लोगों ने तो स्थूल चीजें बताई, टेम्पररी एक आपको ये बता दिया, विधि बता दिया, लेकिन बाबा जो हम बच्चों को बहुत डीप लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर और परमानेंट विधि बताते हैं कि शुद्ध संकल्पों को आप मन के अंदर चालू करो। जितना ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो ज्ञान के मनन चिंतन से आपके अंदर उस ज्ञान की ऊर्जा विकसित होती है, और जितनी ये ऊर्जा आपके मन के द्वारा उन संकल्पों से प्रवाहित होती है वायुमंडल के अंदर, आपके चारों ओर का ऑरा बहुत सहजता से आप क्लीन कर लेते हैं। अक्सर जब हम भट्ठी रखते हैं, बीच बीच में मधुवन आते हैं, तो मधुवन में जब संगठित रूप में बैठते हैं तो ये क्या होता है? सिंपल साइंस यही है, जब संगठित रूप में हम बैठ करके भट्ठी करते हैं, योग करते हैं, तो एक दूसरे का सहयोग हमें प्राप्त होता है। ज्ञान का मनन चिंतन, जो ज्ञान का प्रवाह क्लासेस के द्वारा हमें मिलता है, वो ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर एक ऊर्जा आने लगती है, और वो मनन चिंतन फिर सारा दिन चलता है कि आज ये बात बहुत अच्छी बाबा ने बताई, आज ये बात बहुत अच्छी क्लास में सुनाई गई। अब उसका जब मनन चिंतन करता है तो आपके चारों ओर जो वाइब्रेशन प्रकंपित होते हैं, वो प्रकंपन बहुत पावरफुल होता है, वो आपका ऑरा भी क्लीन करता है और वायुमंडल में सहजता से प्रवाहित होने देता है। दूसरा, जैसे कहा जाता है कि शुद्ध संकल्पों का स्टॉक चाहिए, जितना शुद्ध संकल्पों का स्टॉक, और ये शुद्ध संकल्पों का स्टॉक हमें कहां से मिलता है? मुरलियों से मिलता है, क्लासेस से मिलता है, उसी से हमारे विचारों का क्लीनिंग प्रोसेस। अभी जो क्लास कर रहे हैं संगठित रूप में, हम जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो हमारे वाइब्रेशन का क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा होता है। अमृत वेले जब इकट्ठे बैठते हैं तो जैसे एक दूसरे के वाइब्रेशन हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हमारा ऑरा क्लींजिंग बहुत फास्ट होने लगता है। इसीलिए जब मधुबन आते हैं तो मधुबन आते ही क्या फीलिंग आती है? एक जैसे हाश, ठंडक मिल जाती है, एक जैसे रिलैक्स हो जाते हैं, अपने घर में आए ये फीलिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट जो ज्ञान और योग का वातावरण है, उस वातावरण में प्रवेश करते ही जैसे हमारा ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से जब जाते हैं तो ऐसा लगता है बैटरी चार्ज हो गई। बैटरी चार्ज हो गई माना हमारा ऑरा क्लीन हो गया, और क्लीन हो करके, ऊर्जावान हो करके आप यहाँ से जाते हैं। लेकिन जैसे कहा कि फिर भट्ठी में वापस आते हैं, फिर उस समय, क्योंकि दुनिया के अंदर तो वातावरण बहुत तामसिक है, और वहां पर और अपने पुरुषार्थ से करे उसके बदले अगर यहाँ मधुबन में आ जाते हैं, संगठित रूप में होता है, तो बहुत फास्ट और सहज हो जाता है, मेहनत कम और प्राप्ति अधिक हो जाती है। इसलिए बाबा ने ये सिस्टम बनाई है कि कम से कम साल में एक बार दो बार मधुबन बेहद घर में जरूर आना चाहिए। आने से ही वो ऊर्जा, ज्ञान योग की ऊर्जा हमें जो प्राप्त होती है, वो वहां पर, कई बार कई लोग कहते हैं हम टीवी पर सुन लेते, मोबाइल में सुन लेते जो क्लास, उससे वो ऊर्जा नहीं मिलती है, वो गैजेट्स है, गैजेट से वो ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। जब हम संगठित रूप में आते हैं एक दूसरे के साथ में, तो जो लाइवलीनेस यहाँ है, ये तरंग का आदान प्रदान जो यहाँ पर हो रहा है, ये आदान प्रदान ही हमारी वृत्ति और वायुमंडल को पावरफुल श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके लिए खुद का ऑरा क्लीन करना बहुत जरूरी है, और खास करके आज की तामसिक दुनिया के अंदर जहां निवास करते हैं, जहां चारों ओर इतनी नेगेटिविटी है, ऐसे में जाकर के आपका कार्य क्षेत्र होता है जहां आपको काम करना पड़ता है, घर परिवार में भी जब एक दूसरे को सहयोग नहीं दे पाते हैं तो घर में भी वो वातावरण, वहां भी वो वातावरण, तो उससे जब निकल करके आते हैं तो यहां पर बैटरी चार्ज होने का अनुभव करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, खास करके वर्तमान समय में मधुबन के बेहद घर में आते ही जैसे रिलैक्स हो जाता है इंसान, मन एकदम स्वस्थ होने लगता है, क्लीन होने, स्वच्छ होने लगता है। दूसरा, हमारे संकल्पों का कनेक्शन हमारी भावनाओं के साथ है, और जब भावनाओं के साथ है तो संकल्प ही अगर नेगेटिव है तो भावनाएं भी नेगेटिव हुई पड़ी है। तो इसीलिए ये भावनाओं का भी क्लीनिंग करने के विधि बाबा ने बताई है, बच्चे शुभ भावना, शुभ कामना को निरंतर प्रवाहित करो सर्व के प्रति। आप सभी कहाँ हो, विश्व कल्याण की स्टेज पर बाबा ने हम सब बच्चों को रखा है, हम है तो बेहद की स्टेज पर होने कारण हमारी भावनाएं निरंतर पॉजिटिव प्रवाहित हो, शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित हो, उतना खुद को भी उसका बेनिफिट प्राप्त होता है। देते जाओ, दाता बनकर के जब दूसरों को हम देते हैं तो स्वयं में भी मल्टीप्लाई होता जाता है। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो पॉजिटिविटी भी बांटने से बढ़ती है। इसलिए कहा कि शुभ भावना, शुभ कामना दूसरों के प्रति जितनी प्रवाहित करते हैं उतने स्वयं के प्रति भी हम क्लीनिंग प्रोसेस अपना करते रहते हैं। तो ऊर्जावान बनना है ज्ञान के मनन चिंतन से, शुभ भावना, शुभ कामना से अपनी भावनाओं को भी पॉजिटिव बनाते जाना है। दूसरी बात कि जैसे कहा संकल्पों का, शुद्ध संकल्पों का, समर्थ संकल्पों का स्टॉक चाहिए, नहीं तो व्यर्थ के शिकार बहुत जल्दी बनना स्वाभाविक है। दूसरी बात, वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए आवश्यक है व्रत लेना। व्रत से भी वृत्ति बहुत पावरफुल बनती है। दुनिया के अंदर लोग जब खास त्योहारों पर व्रत लेते, एक दिन का व्रत, अभी नवरात्र चल रही है तो कई लोग 9 दिन का व्रत लेते हैं, ये व्रत भी क्या चीज है, और व्रत भी हमेशा किस चीज का लिया जाता है, पवित्रता का व्रत लिया जाता है। सबसे बड़ा व्रत यही है, ब्रह्मचर्य व्रत, पवित्रता का व्रत, इसलिए उसको व्रत कहा है। लोग इसीलिए जब भक्ति मार्ग में भी विशेष दिन होता है तो पवित्रता का व्रत, मन वचन कर्म की पवित्रता का व्रत, भले एक दिन के लिए क्यों न रखें, लेकिन एक दिन के लिए भी व्रत रखते हैं तो भी उनको ऊर्जा महसूस होती है, उनको अपनी बैटरी चार्ज होने जैसा महसूस होता है। तो बाबा ने तो हम बच्चों को संगम युग के इस ब्राह्मण जीवन के लिए जो ये व्रत दिया है, तो ये व्रत से हमारी वृत्ति स्वतः श्रेष्ठ होने लगती है, इतनी सुंदर और श्रेष्ठ होने लगती है। ये ब्रह्मचर्य व्रत, ये पवित्रता का व्रत कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत पावरफुल चीज है। कुछ समय पहले एक जैन महात्मा से मेरी बातचीत हो रही थी, तो हमने ऐसे ही उनसे पूछा कि भाई जैनी लोग जो है इतना उनका स्ट्रिक्ट व्रत रहता है, चाहे ब्रह्मचर्य व्रत हो, चाहे सुख सुविधा न अपनाने का व्रत वो रखते हैं, और वो चलते रहते हैं। कितना चलते हैं, सारा दिन चलते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान दूसरे। तो हमने कहा उससे तो अच्छा है कि एक स्थान पर बैठकर लोगों का कल्याण करे। चलने में तो कितनी एनर्जी उनकी वेस्ट जाती है, उसके बदले उस एनर्जी को कोई क्रिएटिव पर्पस के लिए लगाया जाए। तब उस महात्मा ने मुझे बहुत सुंदर एक साइंस बताया कि ब्रह्मचर्य व्रत या पवित्रता की व्रत की शक्ति जो है इतनी पावरफुल होती है कि अगर उसको यूज न किया जाए और अगर ये दिमाग पर चढ़ जाए तो इंसान को पागल बना सकती है। इसीलिए ये चलने का जो नियम रखा हुआ है ताकि उस ऊर्जा को यूज करो। इसलिए यूज करने के लिए, क्योंकि अगर यूज नहीं किया जाए तो ये दिमाग के ऊपर चढ़कर इंसान को इम्बैलेंस कर सकती है। बाबा ने हम बच्चों को इसको यूज करने की बहुत सुंदर विधि बताई है। बाबा ने ये हमें तकलीफ नहीं दिया कि वह बच्चे तुम पैदल चलते रहो, ये करते रहो, नहीं। बाबा ने कहा बच्चे ये सेवा का खिलौना जो दिया है ना, रोज खेलते रहो उसके साथ, मन वचन कर्म सेवा करते चलो, है ना। ये सेवा क्यों, हमें अंत तक स्वपुरुषार्थ और सेवा हमें करते रहना है, क्योंकि सेवा करते रहने से हम उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, और जितना उसको सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, खाली लगाते यूज करते इतना नहीं है, लेकिन उसका रिटर्न दुआओं की प्राप्ति होती है, जितनों का कल्याण करते हैं। आज बाबा ने जैसे बड़े बड़े चित्र लगाकर क्या करो, कल्याण करो, सबका कल्याण होना चाहिए, ये भाव था बाबा का। और जितना दूसरी आत्माओं का कल्याण होता रहेगा हमारे द्वारा, उतनी वो दुआओं का स्टॉक, पुण्य कर्मों का स्टॉक हमारे खाते में जमा होता रहेगा। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर विधि दिया है, बच्चे तुम सेवा करो, दौड़ दौड़ के सेवा करो, जितना हो सके सेवा करो। और सेवा करने के बाद इसलिए कितनी खुशी का अनुभव होता है, सोचो आप कितनी खुशी का अनुभव करते हैं। सेवा करने से ही जैसे अंदर से एक लाइटनेस आ जाती है, अंदर से खुशी बढ़ जाती है अंदर से। और जितनी दुआओं का स्टॉक हमें प्राप्त होता है, दुआएं प्राप्त होती है, उतना हमारा ऑरा क्लीन होता है। ये भी एक विधि है ऑरा क्लीन करने की, और हमारे उस वाइब्रेशन को शुद्ध पावन करने की। इसीलिए सेवा एक ऐसा खिलौना है जिसको करते चलो करते चलो कर, उसमें ऊपर नीचे बातें आती रहती है परीक्षा के रूप में, उसको नहीं देखना होता है। बाबा ने ये भी हमें कहा, ये बातें आएगी, उतार चढ़ाव आना ये स्वाभाविक है, लेकिन अगर उसमें चले गए तो फिर वही नेगेटिव शुरू हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव का शिकार नहीं बनना है, हर एक के संस्कार को समझते हुए हमें अपनी सेवा करते रहना है। हम पॉजिटिव कार्य करते चले, बाबा किसमें खुश है, डिस्टर्ब होकर के अपनी स्थिति को डिस्टर्ब करने से बाबा को खुशी होगी, या जब बाबा देखते हैं कि ये बच्चा सेवा करते हुए भी अपनी स्थिति को सुंदर रखता है, सर्व के प्रति अपनी वृत्ति को अच्छी रखता है, उसको देखकर बाबा खुश होता है, किसको देखकर खुश होता है। नेचुरल है, सेवा करते हुए स्वभाव संस्कार अनेक होते हुए भी हम अपनी सेवा में मस्त रहे, ये हमें अंदर से खुशी प्रदान करती है, और ये खुशी जैसे हमारे ऑरा को क्लीन करती जाती है। इसलिए सेवा करते चलो, सेवा को छोड़ो नहीं, मन वचन कर्म जिस भी तरीके से आप सेवा कर सकते हैं। बाबा इसीलिए कई बार अपना एग्जाम्पल देते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी लास्ट तक सेवा किया, लास्ट घड़ी जिस दिन शरीर छोड़ना था उस दिन तक सेवा किया। जो भी दादियां थी लास्ट तक चाहे मनसा सेवा भी क्यों नहीं करते रहे अपने खटिया पर बैठे बैठे, मनसा सेवा वो तरंगे भी जैसे विश्व के अंदर प्रवाहित करते रहे। तो बातों को नहीं देखना है, किसी के संस्कारों को नहीं देखना है, वो उसकी कमजोरी है, हम क्या कर सकते हैं। शुभ भावना शुभ कामना दे सकते और क्या करेंगे, लेकिन जितना हो सके उस चीज को न देखते हुए, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, और आप अपने श्रेष्ठ कर्म में लगे रहो। तो ये भी हमें बहुत अंदर से शक्ति प्रदान करेगी। तो इसीलिए ये व्रत से हमारी वृत्ति स्वतः ठीक हो जाती है। तीसरी बात है कि जितना हम ज्ञान, जो बाबा ने ज्ञान का खजाना दिया है, ज्ञान का खजाना, पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने खजाने की बात की, उसमें सबसे पहले ज्ञान का खजाना, योग के द्वारा शक्तियों का खजाना, धारणा के द्वारा गुणों का खजाना, और सेवा के द्वारा दुआओं का खजाना। तो ज्ञान का जो खजाना है, ये सारे क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, ये सारे सवालों का उत्तर दे देता है। आपने अनुभव किया होगा, जब भी आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उस दिन की मुरली में उसका आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है? मिल जाता है, अनुभव है। तो ज्ञान का खजाना जो है ये हमें सुलझाता है, उलझाता नहीं है। बाबा क्यों कहते हैं बच्चे मुरली मिस नहीं करो? मुरली मिस की माना क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएगा, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। बाबा का बच्चा होते हुए भी ऐसे करते हैं, 10 प्रकार के सवाल अर्थात उलझन क्रिएट करेगी और मुरली सुलझाएगी। जो खुद सुलझा हुआ होगा वो दूसरों को भी सुलझाता जाएगा, जो खुद उलझा हुआ होगा वो दूसरों को भी क्या करेगा, उलझन में डालता रहेगा। खुद तो प्रश्नों के जंगल में होगा, प्रसन्न चित नहीं रह सकता, लेकिन दूसरों को भी प्रश्नों के जंगल में खड़ा कर देगा, तुम भी चलो मेरे साथ प्रश्नों के जंगल में। वो सुलझा हुआ नहीं। और वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए, ताकि वायुमंडल पावरफुल बने, उसके लिए हमें स्वयं अंदर से सुलझे हुए होना बहुत आवश्यक है। जितना हम सुलझे हुए होंगे उतना हम दूसरों की प्रॉब्लम्स में भी उनको सुलझ माना सॉल्यूशन दे सकेंगे। जैसे बाबा ने पिछली बार मुरली में कहा कि बच्चे कारण शब्द दान कर दो, कारण शब्द का दान मांगा ना हम बच्चों से, और कारण नहीं निवारण। तो ज्ञान का खजाना हर बात में हमें सुलझाता है। कोई भी प्रश्न मन के अंदर खड़ा हो, आप देखेंगे उसी दिन की मुरली में उसका आंसर मिल जाता है। जो अंदर खुद सुलझा हुआ है उसके वाइब्रेशन कैसे होंगे, और वो क्या वायुमंडल तैयार करेगा। जो खुद कंफ्यूज्ड होगा वो कैसा घर का वातावरण बनाएगा, कंफ्यूजन वाला ही बनाएगा। बार बार उसके सामने वही कंफ्यूजन वाली बातें होगी और वो दूसरों को भी कंफ्यूज करता रहेगा। इसीलिए ज्ञान मुरली हमें वो शक्ति देता है अंदर से सुलझने की। खुद सुलझे हुए होंगे, हर बात में फुल स्टॉप लगाना जानते हैं, तो हमारी वृत्ति बहुत शुद्ध और पॉजिटिव स्वतः रहेगी, और उसके आधार से जो प्रकंपन फैलेंगे वायुमंडल के अंदर वो प्रकंपन भी बहुत शांति शक्ति प्रेम के होंगे और दूर दूर तक वो जाएंगे। आज मनुष्य के वाइब्रेशन कि लेंथ इतनी लंबी नहीं है, दूर तक नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? उलझे हुए जो है, कंफ्यूज स्टेज में जो है, और कंफ्यूज होने के कारण ही खुद ही जहां कंफ्यूजन में है तो उसके वाइब्रेशन की लेंथ भी बहुत सीमित हो जाती है। वो घर के वातावरण को भारी बनाने वाला बन जाता है, घर के वातावरण को लाइट नहीं बना सकता है। लेकिन जो सुलझा हुआ है वो घर के वातावरण को भी सहजता से हल्का रखेगा, लाइट रखेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञान के मुरली को हमेशा सुनते हुए अपने मन को उलझनों से निकालकर सुलझाते चलो। हर चीज का अपना एक महत्व है। चौथी बात, वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए आवश्यक है कि क्षमा के सागर के बच्चे हमें सर्व को क्षमा करना है। जितना हम दूसरों को क्षमा करते चले उतना किसी के भी नेगेटिव वाइब्रेशन मेरे प्रति नहीं होगा। इसीलिए आप खुद क्षमा के सागर के बच्चे हैं, क्षमा करो। हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। क्यों, क्या वाला सवाल ही नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर कोई विलन का पार्ट बजाना चाहता है तो तुम हीरो का पार्ट बजाओ ना, तुम क्यों विलन बनते हो उसके साथ। कौन सा पार्ट अच्छा है, विलन का या हीरो का? अगर वो विलन का पार्ट बजाना चाहता है तो तुम हीरो का पार्ट बजाओ ना। वो विलन का पार्ट जो बजा रहा है ना, वो भी एक्यूरेट बजा रहा है, क्योंकि ड्रामा परफेक्ट है, एक्यूरेट है। जब ड्रामा ही परफेक्ट और एक्यूरेट है, अब उसको उसने अपने लिए वही पार्ट चुना है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं? इसीलिए क्वेश्चन मार्क नहीं चलाओ। क्षमा के सागर के बच्चे हैं हम, उसके कर्मों को भी क्षमा करते चले ताकि उसका प्रभाव हमारे दिल दिमाग के ऊपर न पड़े, हम अपनी वृत्ति को नेगेटिव न बनने दे। मुख्य बात यही है सारा ज्ञान का सार, कि वृत्ति को नेगेटिव नहीं बनाना है। वृत्ति का अपना कोई आकार नहीं, एक बात याद रखना, वृत्ति का अपना कोई आकार नहीं है। जैसे जल का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन जल को जिस सांचे में डालेंगे वैसा आकार वो बना लेता है। आप लोटे में डालो पानी को, जल को, तो वो लोटे का आकार ले लेगा। आप उसको मटके में डालो, मटके का आकार ले लेगा। पतेले में डालो, पतेले का आकार ले लेगा। जल का अपना कोई आकार नहीं है। ठीक इसी तरह हमारी वृत्ति का अपना कोई आकार नहीं है। जैसे सांचे में हम डालेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, सात्विक या तामसिक, वैसी हमारी वृत्ति शेप लेने लगेगी। इसीलिए सांचा गलत नहीं चुनना। सांचा हमेशा हमारा पॉजिटिव हो, ये ध्यान रखना, क्योंकि सांचा अगर नेगेटिव हो गया तो फिर उस वृत्ति को नेगेटिव ही बनाते जाएंगे, वो कभी सुलझा हुआ पॉजिटिव नहीं बन सकता है। तो इसीलिए कहा कि वृत्ति का अपना कोई आकार नहीं है। जैसा सांचा आपने चूज किया है खुद के लिए, वैसे ही सांचे में वो ढल करके वैसी वृत्ति आपकी बनती जाएगी। अब बताओ हमें कौन सा सांचा लेना है, कौन सा चुनाव करना है? चॉइस हमारी है, हमें स्वतंत्रता है। हमारे पास ये स्वतंत्रता है कि हम ये चुन सकते हैं कि कौन सा सांचा हमें अपने लिए अपनाना है। तो कौन सा अपनाना चाहोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? बस पॉजिटिव सांचा अपनाओ और देखो आपकी वृत्ति कितनी सुंदर और श्रेष्ठ होती जाएंगी, जिसको बाबा कहते रूहानी। रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि, रूहानी स्थिति, रूहानी सृष्टि आपकी कर्मों की बन जाएगी, आपके संस्कारों की सृष्टि भी रूहानी हो जाएगी। तो इसीलिए सांचा जो चूज करो वो बहुत सुंदर और श्रेष्ठ हो, ये हमारा अपना चुनाव है। उसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर दोष नहीं डाल सकते हैं। बाबा की 2 दिन के बाद की मुरली है कि कई बच्चे माया पर दोष डाल देते हैं। बाबा कहते, बच्चे माया पर दोष क्यों डालते हो आप? माया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपने चुनाव किया और फिर जब वो आपको परेशान करते तो माया के ऊपर दोष डाल देते हैं। माया दोषी नहीं है, दोषी कौन है? दोषी कौन है? हमारा रॉन्ग चॉइस, हमारा रॉन्ग चॉइस ये दोष है। इसीलिए उसको ठीक करो, राइट चॉइस अपना लो, आपकी वृत्ति जैसे श्रेष्ठ हो जाएंगी तो धीरे धीरे आपकी वृत्ति रूहानियत से भरने लगेगी और हरेक को आप साक्षात्कार करा सकेंगे, क्योंकि साक्षात्कार का आधार है रूहानी वृत्ति और रूहानी दृष्टि। तो आपकी दृष्टि द्वारा भी अनेकों को साक्षात्कार होगा, आपकी वृत्ति द्वारा भी अनेकों को अनुभव होगा कि इस व्यक्ति के पास जब बैठते हैं, इससे बात करते हैं, कितना सुकून मिलता है। उसका कारण यह है कि उसने तो अपनी वृत्ति को एक पॉजिटिव सांचे में डाल दिया है। तो हम सबको भी अपने वृत्ति को पॉजिटिव सांचे में डालना है और ज्ञान यही हमें मदद करता है पॉजिटिव सांचे में अपनी वृत्ति को डालने के लिए। वृत्ति पावरफुल होगी तो वायुमंडल तो पावरफुल बनना ही है। इतना बड़ा शांतिवन कॉम्प्लेक्स का अगर वायुमंडल आप अनुभव करते हो और यहाँ से स्टेशन जाते हैं तो स्टेशन तक का भी अनुभव होता है, कैसा वायुमंडल था और कहाँ आ गया। कई लोग कहते हैं, अरे ऐसा लगता था हम कहाँ नरक में थे, स्वर्ग में आ गए, अब स्वर्ग से फिर हमें नरक में जाना होगा। तभी तो कई बार बाबा को भी मुरली में कहना पड़ता है कि बच्चे जाना तो पड़ेगा, बाबा तो सबको यहाँ बिठाएगा नहीं, जाना ही है ताकि दूसरी आत्माओं का भी कल्याण कर सको। लेकिन आपकी जितनी वृत्ति रूहानियत से भरी होगी, आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति वाली होगी, उतना दूसरों को भी सहजता से अनुभव करा सकेंगे और आपके वाइब्रेशन से भी उनको महसूसता आएगी कि इनके पास कुछ न कुछ तो पावरफुल है ना। तो रूहानियत वाली वाइब्रेशन और वृत्ति को हमें अपने अंदर विकसित करना है। और अंतिम बात कि वृत्ति को पावरफुल बनाना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को विकसित करना होगा। जब तक बाबा तो कहते साधन तो है, बाबा ने अनेक साधन दिए हुए हैं, लेकिन साधनों को भी यूज करना है तो कैसे, एक बेहद की वैराग्य वृत्ति से। बाबा कई बार आरंभ की बातें जब सुनाते हैं कि यज्ञ की शुरुआत जब हुई तो इतने साधन नहीं थे, लेकिन उस समय 14 साल की बाबा ने जो भट्टी बनाई थी उस भट्टी में दादियों से क्या करवाया, बेहद की वैराग्य वृत्ति को डेवलप किया। और जितनी बेहद की वैराग्य वृत्ति थी तो सेवा में भी उनको रिजल्ट मिलता था। जैसे उनके आसपास इतना पावरफुल कवच तैयार कर लेते थे कि कोई भी आत्मा उस कवच के अंदर उनको स्पर्श नहीं कर सकता था, उनको टच नहीं कर सकता था, इतना पावरफुल कवच उन्होंने अपना विकसित किया था दादियों ने। तो इस पतित तमो प्रधान दुनिया में जहां हमें रहना है, हमें भी क्या करना है, अपना कवच इतना पावरफुल बनाना है कि कोई भी अशुद्ध आत्मा के वाइब्रेशन भी उसमें प्रवेश न हो सके। और उसके लिए जितनी हमारी आंतरिक बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, अर्थात हम बेहद के राज ऋषि जब बनते हैं तो वो बेहद की वैराग्य वृत्ति का वाइब्रेशन हमें सच्ची तपस्या का अनुभव कराएगा। बेहद की वैराग्य वृत्ति यानी सब कुछ छोड़ देना, उसको वैराग्य नहीं कहा गया है, सब के बीच में होते हुए भी न्यारा और प्यारापन का बैलेंस, ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। छोड़ना नहीं है लेकिन उसके बीच में रहते हुए न्यारा और प्यारा। राज ऋषि, राज भी हो अपनी इंद्रियों के ऊपर और ऋषि भी हो तो राज ऋषि बनना है, और जितना ये न्यारा प्यारापन का बैलेंस होगा उतनी बेहद की वैराग्य वृत्ति अंदर से पावरफुल होगी, और ये बेहद की वैराग्य वृत्ति ही वायुमंडल को चार्ज करने लगेगा। दूर दूर तक भी उस वायुमंडल के अंदर ये बेहद के वैराग्य वृत्ति के वाइब्रेशन प्रवाहित प्रकंपित होने लगेंगे। तो इसीलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति किसको कहा जाता है, आपका अगला क्लास इसी के ऊपर है शीलू बहन जी के द्वारा। तो ये मुख्य बात थी कि वृत्ति द्वारा वायुमंडल को कैसे पावरफुल बनाना है। तो शुद्ध श्रेष्ठ सकारात्मक शक्तिशाली संकल्पों का स्टॉक चाहिए। ज्ञान का खजाना स्वयं के अंदर होगा तो सुलझे हुए रहेंगे। पवित्रता का व्रत जितना हमारा पावरफुल होगा उतनी हमारी वृत्ति पावरफुल होगी। क्षमा के सागर के हम बच्चे हैं, सबको क्षमा करते जाना है, और बेहद के कल्याणकारी स्थिति की स्टेज पर हम है, सबका कल्याण हमें करना है। बेहद की दृष्टि और वृत्ति जितनी हमारी विकसित होगी उतना ही विश्व कल्याणकारी बनना सहज हो जाएगा। और रूहानियत वाली वृत्ति हो, रूहानी दृष्टि हो, जितना ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास हमारा पावरफुल होगा, देह अभिमान होगा तो रूहानियत नहीं आ सकेगी। तो मैं और मेरेपन को जिसने त्याग किया हुआ होगा वही रूहानी वृत्ति को विकसित कर सकेंगे, और उस वृत्ति के द्वारा हम ऐसा अपना कवच तैयार करेंगे जिसमें हम सदा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हर 6 महीने में मधुबन बेहद घर में आकर बैटरी चार्ज कर लो, क्योंकि जाना है इतना तमोगुणी वातावरण के अंदर, जब वहां जाते हैं तो कम से कम, अच्छा 2 बार नहीं, 1 बार तो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, 1 बार तो आएंगे। तो इसीलिए आकर के अपने बैटरी चार्ज कर लो, तब उस दुनिया के अंदर रहना आसान होगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और जैसे कहा, अगर खुद की वृत्ति भी नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव घटनाओं को आकर्षित करेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, उससे अच्छा है सुलझे हुए रहो, बैटरी चार्ज हो, ऊर्जावान हो, और फिर उस दुनिया में जाओ, दूसरे को भी ऊर्जावान बना दो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।
खुशनुमा पाओगे।